Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taaza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एशपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
जी शुक्रिया मनोज जी.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी.
थैंक यू मनोज. The headlines: domestic benchmark indices log gains, Sensex adds 230 points, Nifty settles at 24,275. India to launch first ever tranche of auction of mineral blocks in its offshore areas. Central Bank of Sri Lanka announces introduction of overnight policy rate to replace dual rates in the island nation. And global crude prices continue upward trend. Brent crude trades at $73.11.
घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक. सेंसेक्स 230 अंक उछला, निफ्टी 24,275 दर्ज हुआ. भारत अपने ऑफशोर एरिया में पहली बार मिनरल ब्लॉक की नीलामी की श्रृंखला शुरू करेगा. श्रीलंका में केंद्रीय बैंक ने दोहरी दर व्यवस्था को बदलकर ओवरनाइट पॉलिसी रेट लागू करने का ऐलान किया. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी. ब्रेंट क्रूड के दाम $73.11 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचे. सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां लुढ़कने फिर उठ खड़े होने का क्रम आज भी जारी रहा. पहले लगातार दो कारोबारी सत्र में तेजी, उसके बाद कल थोड़ी सी नरमी, आज फिर से निवेशकों की अच्छी खासी लिवाली जारी रही. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 0.3% बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 230 अंक यानी 0.29% बढ़कर 80,234 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 80 अंक यानी 0.33% बढ़त के साथ 24,275 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो वहां प्रदर्शन आज भी छोटी और मझौली कंपनियों का बढ़िया रहा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.34% लाभ के साथ बंद हुआ. स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से अधिक की वृद्धि हुई.
Domestic benchmark equity indices today ended in positive territory, led by gains in banking and auto stocks. The 30-share BSE Sensex climbed 230 points, or 0.29%, to close at 80,234, while the NSE Nifty 50 rose 80 points, or 0.33%, to settle at 24,275. The broader market at the Bombay Stock Exchange also logged gains. The mid-cap index added 0.34% and the small-cap index advanced over 1%. In the Sensex index, 18 out of 30 companies ended with gains. Among the top gainers, Adani Ports surged over 6%, NTPC increased over 2%, and HDFC Bank rose 1.4%. Conversely, in the top laggards, Titan as well as IndusInd Bank both shed over 0.7% each. SBI Bank lost over 0.6% and Sun Pharma fell over 0.5%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, utilities advanced over 3%, power gained over 2.7% and services added over 2.5%. In the top laggards, realty slipped 0.4%, healthcare lost over 0.2% and focused IT was marginally down 0.08%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,593 companies advanced, shares of 1,338 companies declined, while shares of 109 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 71 companies hit their 52-week high, while 37 hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 12 पैसे कमजोर हुआ. 84 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतरदिवसीय कारोबार में 106.45 पर चल रहा था।
Dr. Sharma, as Manoj said at the beginning of this story, you know, there were 2 days when we saw the markets rising. Then yesterday, there was a marginal loss. Today, again, we've seen, you know, the markets closing in the green. If we look at the overall fact, what are the reasons that you that have, you know, have been impacting the markets, and especially today?
Yes, Anubha, because as I mentioned earlier also, that this year, 2024, is a year of volatility. Many developments at the global level, at political level, elections in US. So now the markets are sometimes uncertain about the policy stance going forward, and geopolitical developments are deepening. But there is no major negative correction in the market. These are just profit bookings in the market, because markets were at all-time high 2 months ago. Then there was some profit booking, some deepening of the geopolitical developments, and some volatility because of the US elections. So now markets are consolidating, sometimes going up for a few days, then again consolidating at the lower level. So this is I think a good correction for the markets at this juncture to move forward and to become more robust in the coming times.
Do you think the geopolitical continue with this?
हाँ श्रोताओं, हम यहाँ पर शेयर बाजार पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले आज की एक अहम खबर, हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर जिसे हम अंग्रेजी में लेना चाहेंगे।
The Central Bank of Sri Lanka CBSL announced introduction of the overnight policy rate OPR replacing dual rates in the island nation. In addition, the CBSL announced continuation of its stance towards easing the policy rates with an effective reduction of approximately 50 basis points, keeping OPR at 8%. The previous levels were maintained at 9.25% and 8.25% for SLFR and STFR respectively. Now let us go over to our correspondent, special correspondent in Colombo, Ahmed Muin Farooqi, who's with us for the latest updates. Ahmed, can you give us more information about the current financial decisions that have been taken in the island nation?
Anubha, you see, primarily speaking, the International Monetary Fund had recommended to the Sri Lankan government that Sri Lanka Central Bank should move towards a single policy rate, which will help it to improve monetary policy transmission and market expectations. Currently, till now, Sri Lanka Central Bank was using two policy rates, that is a standing deposit facility rate, SDFR, and the lending rate, the SLFR. These rates form the interest rate corridor. Now, the proposed policy is that the IMF has recommended that the central bank introduce a new key policy lever within the corridor. Now, the new overnight policy rate, it is a primary monetary policy tool that will be used to signal and operationalize the central bank's monetary policy stance. And this is something which has been expected since quite some time. In fact, the proposal was made in September this year, and it has been implemented today. Anubha.
Thank you for that information. That was Akashwani special correspondent Ahmed Muin Farooqi, who was giving us this update from Colombo.
श्रोताओं, श्रीलंका हमारा ऐतिहासिक प्राचीन मित्र, हमारे दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आर्थिक संबंध, और यहाँ पर डॉक्टर शर्मा आपसे सवाल, श्रीलंका में जो आर्थिक नीतियों में ये बदलाव आए हैं, ये ओवरनाइट पॉलिसी रेट में जो बदलाव आएगा ये क्या है और किस रूप में वहाँ की स्थितियाँ बदलने वाली हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
जी मनोज जी, आपने सही फरमाया कि श्रीलंका जो है हमारा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनर है। हमने सबसे पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी श्रीलंका के साथ ही साइन किया था 2000 में, और अभी कुछ वर्ष पहले कोरोना के जस्ट बाद काफ़ी एक डाउन टर्न था श्रीलंका में, जो जीडीपी था दिल्ली से रिलेट कर रहा था, उसके बाद इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी काफ़ी हाई मोड पे थी, जिससे काफ़ी ट्रबल कंट्री को सहन करनी पड़ी। और लास्ट ईयर भी 2023 में भी जो जीडीपी था वो माइनस में, लगभग कोई -2.3% के आसपास जीडीपी रहा। इस वर्ष भी 2024 के लिए भी 2% से कम का ही ग्रोथ जो है श्रीलंका में प्रोजेक्टेड है। तो इस संदर्भ में टू बूस्ट द डिमांड ट्रैजेक्टरी, टू बैलेंस द इकोनॉमी, टू एड्रेस द इन्फ्लेशन सिचुएशन, उन्होंने अब एक ही रेट जो ओवरनाइट पॉलिसी रेट हम बोलते हैं उसको 8% के ऊपर लेकर आए हैं। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पहले वहां पे जैसे कि अनुभा जी ने बताया कि एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट होता है, एक स्टैंडिंग लैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है, जो दोनों 9.25% एंड 8.25% पे प्रिवेल कर रहे थे. नाउ द ओवरनाइट रेट विल बी ओनली 1.8%, जिसको OPR कहा जाता है. उन्होंने IMF की रिकमेंडेशन के ऊपर ये एक कदम उठाया है कि इकोनॉमी को एक सही दिशा मिले, एक ईज ऑफ इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट हो, और जो डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो और ज्यादा प्रफुल्लित हो, और उनका जो गति है, जो GDP की ग्रोथ है, वापस उसी स्तर पे आ जाए जो कि कोरोना से पहले इकोनॉमी एक डायनामिक मोड में थी. श्रीलंका एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है. श्रीलंका का जो पोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है, और वो ट्रेड में बहुत सिग्निफिकेंट है. हमारा भी बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर है. तो आने वाले टाइम में हम आशा करते हैं दिस OPR विल फैसिलिटेट एंड बूस्ट द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन द कंट्री.
हम कामना करें कि हमारा जो पड़ोसी देश है वह समृद्धि के पथ पर बढ़े, और हम दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंध आगे लगातार बढ़ते रहें. एक बार फिर से लौटते हैं स्वदेश. डॉक्टर शर्मा, आपने शेयर बाजार पर जो हम चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा कि वर्ष 2024 उथल पुथल वाला रहेगा, यानी उतार चढ़ाव बना रहेगा. हम अंतिम चरण में 2024 के पहुंच गए हैं, तो हमारे श्रोताओं को ये सलाह दें कि बेशक शेयर बाजार में उथल पुथल रहे, लेकिन हमारे अपने जीवन में हमारे अपने निवेश इस उतार चढ़ाव से कम प्रभावित हों, और हो भी तो हम मुनाफे की ओर कैसे अग्रसर हों.
देखिए, इसमें मनोज जी आपने बहुत सही पूछा. इसमें थोड़ा माइंडसेट को स्टेबल करने की मैं एक सजेशन दूंगा हमारे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अगर हम देखें कि जनवरी 2024 में जो निफ्टी था वो लगभग कोई 22,000 के आसपास प्रिवेल करता था, और अभी 23,400 या फिर 24,400 अभी तक 2000 पॉइंट्स में, और 25 से ऊपर जाके वापस निफ्टी वहां पे लौटा है. तो काफी मार्केट्स ने बहुत अपसाइड भी देखा और बहुत वॉलेटिलिटी भी देखी, और अभी भी थोड़ी वॉलेटिलिटी है. उसके लिए फैक्टर जो है वो खास करके जो ग्लोबल सिचुएशन है, ये नहीं है कि हमारी मार्केट ही वॉलेटाइल है, पूरे विश्व की मार्केट जो है वॉलेटाइल है हर एक जगह पे, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी डीपन हुई है. किसी एक रीजन में नहीं, एक कंट्री के बाद दूसरे में ऐसे जो है वो स्प्रेड अभी भी हो रही है, तो जिसकी वजह से मार्केट्स के ऊपर गंभीर असर आता है. लेकिन जब इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रहे, जब इंडिया ने बहुत अच्छे से अपने GDP में बिहेव किया, अपने और पैरामीटर्स में इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी भी कम हुई, सॉफ्टन हुई पीक से, तो उसके नजरिए में मार्केट्स वॉलेटाइल तो रहती हैं, लेकिन मार्केट्स का जो स्तर है वो अभी भी जो जनवरी में मैंने बताया 22,000 का जो इंडेक्स था उस टाइम पे निफ्टी का, उसके अभी हम सिग्निफिकेंटली हम लगभग 2400 पॉइंट्स ऊपर हैं. तो हमारी मार्केट ये बताती है कि वी आर रेजिलियंट मार्केट डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स. इतनी ज्यादा उथल पुथल के बावजूद भी हमने काफी अच्छी बढ़त इस साल में भी
हासिल की.
आप जो रेजिलियंस की बात कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा, द वॉलेटिलिटी एंड द रेजिलियंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड एज यू मेंशन्ड आफ्टर रीचिंग रिकॉर्ड हाइज वी हैव बीन सीइंग करेक्शंस इन द मार्केट्स लेटली. So what role are the domestic buyers, both institutional and retail investors, playing in maintaining a balance in our markets?
Yes, very good question, Anubhaji, because now the retail participation is increasing significantly. And according to the recent data, more than 45% transactions are by the retailers. That is a great support to the market, because earlier markets were majorly dependent on the FIIs before 7, 8, 9 years. But slowly, now this trend is shifting towards the retailers' participation and DIA's participation. Now, everybody is believing on India's growth story, India's stock markets, and India's resilience. Particularly, despite the headwinds, India's market remained profitable. If we go by the numbers from the January, still we are significantly high from the start of our current year of 2024, though this was one of the most volatile year for the global economy.
जी, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. सरकार देश के ऑफशोर एरिया के लिए पहली बार खनिज ब्लॉक की नीलामी श्रृंखला की शुरुआत कल करेगी. इस श्रृंखला में अरब सागर और अंडमान सागर में फैले 13 खनिज ब्लॉक शामिल हैं. इनमें रेत, चूना, मिट्टी और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का मिश्रण सम्मिलित है. ये खनिज बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च तकनीक निर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं. खान मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये पहल देश के ऑफशोर एरिया में समुद्र के नीचे मौजूद खनिज संसाधनों की खनन के लिए काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है. अपतटीय क्षेत्र यानी ऑफशोर एरिया में देश के तटवर्ती क्षेत्र, महाद्वीप, द्वीपीय जलसीमा, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। देश के 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला विशेष आर्थिक क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का भंडार है। डॉक्टर शर्मा, इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देश की प्रगति के लिए माने, क्योंकि 20 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो हमारे खनिज भंडार हैं उनमें हम खनन के लिए अब औपचारिक रूप से जाने वाले हैं।
देखिये मनोज जी, जो खनन है, जो मिनरल्स है, वो हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है और हमने तो अभी मिनरल कॉरिडोर्स का भी अनाउंसमेंट किया है पीछे बजट में। तो एक सेल्फ रिलायंस की तरफ हमारे जो कदम है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द आत्मनिर्भर और द सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो कि आने वाले टाइम में हमें जिस तरीके से हम जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, कई बार जो मिनरल्स को लेके या फिर ऐसे मोनोपोलीज होती हैं, तो वी विल बी एबल टू मीट ऑल दोज डिमांड्स ड्यूरिंग द क्राइसिस ईयर्स।
आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे पर्यटन और बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा सके। श्री शेखावत ने आज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटन में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण पूरा बदल गया है, क्योंकि वह पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के विकास के लिए अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। डॉक्टर शर्मा, यहां फिर एक छोटा सा सवाल कि ये अष्ट लक्ष्मी राज्य हमारे किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर जो ऑर्गेनिक खेती को लेकर या विभिन्न जैसे नया कह लें कि 12वां संस्करण स्मार्ट का खुला है, किस रूप में वहां की इकोनॉमी को बूम करेगा जो देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में सहायक होंगे?
देखिए मनोज जी, जो हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है, हमारी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, हमारा जो न्यू नॉर्मल है कि हम 7-8% के ऊपर ग्रो करते हैं, तो अभी हमें जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, जो हम अष्ट लक्ष्मी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारी नई कॉरिडोर्स हों, हम बात करते हैं कि हमारे नए ग्रोथ गेटवेज बने, तो उसी संदर्भ में ये एक अच्छे कदम है जो आने वाले टाइम में जो हमारी ट्रैजेक्टरी है, जो 7-8% की हम ग्रोथ लेते हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है जो हम ऐसे स्टेट्स को और ज़्यादा बूस्ट करके, वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके और नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करके अपनी ग्रोथ को और सुदृढ़ कर सकते हैं, और दूसरा उन रीजन्स में भी हम आगे ग्रोथ जो पैराडाइम्स हैं उनको और सुदृढ़ करके ग्रोथ को स्ट्रेंथन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रोथ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं।
मूविंग ऑन, इन गुजरात द स्टेट गवर्नमेंट टुडे अनवेल्ड द न्यू कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी इन गांधीनगर, एमिंग टू क्रिएट 12 लाख मोर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर इन द कमिंग 5 ईयर्स। लॉन्चिंग द पॉलिसी, द स्टेट मिनिस्टर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज बलवंत सिंह राजपूत सेड द न्यू पॉलिसी फोकसेस ऑन डेवलपिंग सेल्फ सस्टेनिंग cottage industries in the state by increasing credit facility, market access, skill and infrastructure development, and promote and preserve traditional handicrafts of the state. Under the new policy, the maximum loan amount under the Sri Vajpayee Bankable Scheme has been increased from 8 lakh rupees to 25 lakh rupees, and the subsidy amount raised from 1 lakh 25,000 rupees to 3 lakh 75,000 rupees. Dr. Sharma, this is of course a very state-specific story. We are talking about Gujarat, but overall, if we look at it, the cottage and rural industries, it's a very important sector. You know, how important is this sector so far as India's economic growth and our exports are concerned?
Yes, this is very important for the creation of employment. Actually, now our focus is to create a balance in the economy so that the employment opportunities are created not only for the white-collar jobs, but for the all growing young population in the country. Because now our exports, majorly, we are very good in the technology-intensive exports also, but we have to boost the labor-intensive exports, yes, also, because this is one of the labor-intensive industries. So that's why the focus on cottage industry will be very, very fruitful to strengthen the economy, to create employment opportunities, and to create more participation of the workers from the rural areas. Particularly, the women participation, yes, will be more in such kind of industries, and the workforce participation by women will also increase.
डॉक्टर शर्मा, यहाँ यदि हम ध्यान देना चाहें प्रधानमंत्री के उस आह्वान पर जिसमें उन्होंने लोकल के लिए वोकल होने की बात कही थी, यहाँ पर हम यदि कॉटेज इंडस्ट्री को जो हस्त यानी हाथ से बनाने वाले खिलौने हैं या कह लेंगे छोटे कारोबारी हैं, उनके लिए यह पूरा क्षेत्र किस रूप में गुजरात के माध्यम से कह लें कि हम देश भर में जैसे खिलौना उद्योग को ले लें कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के खिलौने हुआ करते थे, उसमें थोड़ी सी भागीदारी हमारी बढ़ी है, दुनिया के अन्य देशों की भी बढ़ी है, हमारी भी बढ़ी है, उसमें ये कॉटेज इंडस्ट्री और इस तरह की पॉलिसी किस रूप में भूमिका निभा सकती है?
देखिए, जो ये ऐसे कदम हैं जिनसे लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं, जो लेबर की पार्टिसिपेशन इंक्रीज करती हैं, जैसे आपने टॉयज की बात की, छोटे छोटे खिलौनों की बात की, और फिर इसमें मैं एक चीज़ और लेके आना चाहूँगा, जो फूड प्रोसेसिंग है, उसमें कई बार वो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो जिनको पैक करके वो शहरों तक पहुंचाए जाते हैं, गांव में उनकी पैकिंग होती है, फिर उनको आगे शहरों में जाके बेचा जाता है। तो ऐसे संदर्भ में जो है इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हमारा जो कंट्री है बढ़ता है, क्योंकि अगर हम एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीज़ों को ही फोकस करेंगे तो फिर उसे जो एम्प्लॉयमेंट के संसाधन है जो कि स्किल्ड लेबर के लिए, अनस्किल्ड लेबर के लिए या सेमी स्किल्ड लेबर के लिए, और खास करके रूरल एरियाज में, तो वो हम नहीं पैदा कर पाएंगे। ये बहुत अच्छे सराहनीय कदम है कि हम एक ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, जहाँ पे पार्टिसिपेशन, जहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जो रूरल वर्क फोर्स है उसका जो पार्टिसिपेशन है और ज़्यादा इंक्रीज हो, और ऐसी ज़रूरत भी है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में तो है ही, इंटरनेशनली इनकी बहुत डिमांड है। हम इस चीज़ को, जो हमारा लक्ष्य है, जो हम $1 trillion का एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं बाय 2030 इन मर्चेंडाइज एंड इन सर्विसेज, $2 trillion का इकोनॉमी एक्सपोर्ट इकोनॉमी होगा बाय 2030, तो वो तभी होगा जब हम हरेक ऐसे सेक्टर्स की भागीदारी को आगे प्रोत्साहित करेंगे और उनका पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज करेंगे।
आवश्यकता है उस दृष्टि की जिसमें हम अपने हुनर को अपने उत्पाद के साथ जोड़ें और उसके लिए बाजार सरकार उपलब्ध करा रही है, तो उस बाजार का इस्तेमाल करते हुए वैश्विक पहुंच बनाएं। समावेशी समृद्धि से ही भारत आगे बढ़ेगा, मजबूत बनेगा। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.8% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.5% की गिरावट देखी गई। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.12% घाटे के साथ बंद हुआ। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से, अच्छी खासी खरीदारी से, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.2% की तेजी लेकर बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.5% की वृद्धि हुई। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां के प्रमुख बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक नरमी देखी जा रही थी। फ्रांस का कैक 40 1.4% नीचे कारोबार कर रहा था। जर्मनी के डैक्स में 0.5% से अधिक की गिरावट बनी हुई थी, और लंदन का फुटसी 100 भी 0.03% के मामूली नुकसान के साथ चल रहा था।
Manoj, contrary to how what we've seen in the Asian markets and even in the European markets till now, the US markets were on a different, totally different trajectory yesterday. US stocks reached record highs yesterday, led by a rally in technology stocks. Meanwhile, investors also digested President-elect Donald Trump's tariff announcements on top trade partners and the latest minutes from the Federal Reserve November meeting that showed officials' support moving gradually to lower interest rates, given stronger than expected U.S. economic growth and fading concerns about the health of the Labor Ministry. The Nasdaq composite jumped 0.6% or more to end at 19,175. The S&P 500 climbed over 0.5% to close at 6,022, surpassing the all-time high it reached a couple of weeks ago. And the Dow Jones Industrial Average gained 0.28% to settle at 44,860, setting a new record just a day after its previous high. Dr. Sharma, here I want to ask you, we've seen that despite whatever President-elect Donald Trump said about imposing tariffs on especially Canada, Mexico and China, the investors, your investors, seem to have shrugged off that kind of threat. Do you think they're still waiting to see if these announcements, pronouncements by Donald Trump are actually going to convert into policy?
Because markets are always futuristic, so that's why markets are now banking on the positive policies of Mr. Trump. And the second booster is by the Fed Reserve. Those are indicating that that the interest rate environment will cool down in the coming times. That's why the markets are in a great gung-ho in the U.S. Economy. So I believe this is the great policy change, policy stance, and the policy thought process in the U.S. economy, which is shaping the whole world. That's why the markets in some countries are becoming volatile, where there is some fear is that the Trump may take such kind of decisions and they can be impacted in the coming times. So I believe the markets in the next 2 months, December and January, will be volatile. The volatility will continue because there will be many announcements.
Yes.
Some may be for favor or some may impact. So that's why the but the growth trajectory, which is strong right now, that is projected by IMF, that India is growing significantly. India is robust. So that will continue. And as I mentioned, that we will remain resilient in the coming times too.
विदेशों से खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने आज टोक्यो में जापान के उप विदेश मंत्री मासाताका ओकानो के साथ सामरिक व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित आर्थिक सुरक्षा पर भारत जापान वार्ता के पहले दौर की सह अध्यक्षता की. इस वार्ता में दोनों सरकारों के हितधारक मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों ने भाग लिया. बैठक में संबंधित आर्थिक सुरक्षा नीतियों पर विचारों का आदान प्रदान करने, औद्योगिक और तकनीकी लचीलापन बनाने के लिए साझेदारी को मजबूत करने और प्रमुख प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और अनुप्रयोग में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई.
Moving on, artificial intelligence and advanced grid management systems are reshaping the future of sustainable energy. Industry leaders revealed today at the RAK Energy Summit at Ras Al Khaimah, UAE, held under the patronage of Sheikh Saud bin Sakr Al Qaisimi at the Al Hamra International Exhibition and Conference Center. The two-day summit brings together regional decision makers and experts to address critical energy transition challenges in the Gulf Cooperation Council. Let's move on to commodities. Oil prices continued upward trend today amid anticipation that the OPEC Plus bloc could delay a planned increase in oil output in its meeting scheduled later this week. Brent crude was trading 0.41% up at $73.11 per barrel, and WTI crude had gained 0.45% to trade at $69.08 per barrel, according to the latest reports.
हम तेल के दाम पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी, खासतौर से ये ध्यान में रखते हुए कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें कुछ विराम आने की बात अब अच्छी दिख रही है कि वो विराम शायद अच्छी तरह लागू हो और शांति आए, तो तेल के दाम कहाँ जाते दिख रहे हैं?
देखिए, तेल के दामों में वॉलेटाइल जरूर रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो डिमांड है, वर्ल्ड वाइड डिमांड जो है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है. तो तेल के दामों में हम थोड़ा स्पेकुलेशन देख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग के प्राइसेस में स्पाइक आए, बट प्राइसेस विल रिमेन एट द लोअर लेवल.
जी,
एट द करंट लेवल.
एंड एज अ वेरी क्विक क्वेश्चन डॉक्टर शर्मा, एज मनोज वाज सेइंग दैट यू नो नाउ दैट देयर इज अ सीज़फायर हैज बीन अनाउंस्ड बिटवीन इजराइल एंड हिज़्बुल्लाह, डू यू थिंक दैट despite the fact that the oil prices continued their upward trend today, then the prices may steady down a bit because of this positive news coming out of the region, which
yes.
is very crucial for oil production.
Yes, that is true, that this announcement may strengthen the prices at this level.
आइए चलें सराफा बाजार. सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 1.2% बढ़कर 76,390 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.9% बढ़कर 89,010 रुपए प्रति किलो पर थे. एमसीएक्स में वहां पर दिसंबर आपूर्ति वाला सोना 1.6% बढ़त के साथ था. और यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices log gains. Sensex adds 230 points. Nifty settles at 24,275. India to launch first ever tranche of auction of mineral blocks in its offshore areas. Central Bank of Sri Lanka announces introduction of overnight policy rate to replace dual rates in the island nation. And global crude prices continue upward trend. Brent crude trade at $73.11. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar. Market Mantra.
Bye.